दूसरे प्रकोष्ठ में, दूसरे भाव में वो अकेले ही रथ पर लौटे वीरा सागर में डूबते हुए। उनके साथ में कृष्ण बलदेव और सखा लोग भी नहीं आए। इसी प्रकार से ब्रज की गोपियों में भी गोपों और पशु पक्षी भी दो भागों में विभक्त हो गए, दो प्रकोष्ठ उनके तैयार हो। एक विभाग में ये कृष्ण के साथ में मिलकर के जैसे गौवा चराते हैं और काम करते हैं वैसे करते रहे, और सब समय उनके साथ में, इसलिए पशु लोग भी बड़े आनंदित हैं और गोप गोपियां भी बड़े आनंदित हैं। और दूसरे प्रकोष्ठ में जैसे नंद बाबा यशोदा दुखी हैं, ऐसे पशु पक्षी भी बहुत दुखी हैं, इसलिए दो दो विभाग हो गए, एक प्रकट और एक अप्रकट। अप्रकट लीला वाले और वो दोनों एक साथ रहने पर भी एक दूसरे को वो नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग कृष्ण से भी युक्त नंद बाबा के साथ दुख सागर में निपतित हैं और कुछ लोग सजुक्त नंद बाबा के साथ आनंद में निमग्न हैं। प्रतिदिन की लीला की भांति गोचारण और सारी लीलाएं वैसे ही पूर्ववत हो रही। अथच एक दूसरे को वो नहीं जानते। वो नंद बाबा जो हैं अप्रकाश वाले, वो इनको नहीं और वो उनको नहीं, वो कृष्ण और बलदेव, इस बलदेव और कृष्ण को नहीं देख रहे। तो यदि कहो ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है? नारद जी एक समय द्वारका पहुंचे, असंख्य कृष्ण प्रणयिनी, असंख्य माने 16108 उनकी रानियां हैं, उनके घरों में अनेक अनेक रूपों में दर्शन किए। पहले जब गए रुक्मिणी जी के राजभवन में गए और देखा उनकी हजारों वैसे ही रूपवती गुणवती दासियां हैं और रुक्मिणी जी स्वयं उनके हाथों से चमर लेकर और उसको झल रही हैं कृष्ण को, और कृष्ण बड़े आराम के साथ में बैठे हुए उनके दिए हुए तांबूल बिटिका इत्यादि को ग्रहण कर रहे हैं और उनसे नाना प्रकार के आलाप कर रहे हैं और वो तरह तरह से सेवा कर रहे हैं। कृष्ण नारद जी देख करके, नारद जी वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही नारद जी को देखते ही कृष्ण उठ खड़े हुए और उनके सिंहासन पर आसन पर बैठाया और बैठाकर उनके चरण पखारे, धोया और तरह तरह से उनकी आतिथ्य ग्रहण किया, उनकी सेवा की, तत्पश्चात उनको खिलाया पिलाया, उनका पूजन अर्चन और आरती उतारी। नारद जी प्रतिरोध नहीं किया, क्यों क्यों नहीं प्रतिरोध किया? भगवान की लीला में बाधक न बन जाए। और कृष्ण ने पूजा क्यों की? स्वयं ब्रह्मण्य देव है, आप इधर आइए, आप इधर में आइए, कलाचंद जी के पास में बैठ जाइए और इस समय कई बार में मत जाइए, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाए। और आगे बैठे और सुनेंगे, अब दूसरे दिन हम पूछेंगे जी हमने क्या। तो भगवान स्वयं नारद जी के पाए पखारे, चरण धोया और वंश के साथ सब सबको उन्होंने पान किया, फिर उनका अर्चन किया, विधिवत उपहार दिए, उन्हें भोजन कराया, संतुष्ट कराया और नारद जी कुछ बोले नहीं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अंत में नारद जी ने पूछा, जी प्रभो आपके चरण धौत जल गंगा हैं, जिसे विश्व ब्रह्मांड का उद्धार करते हैं, आप स्वयं वेद के वक्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, और स्वयं जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वरों के ईश्वर होकर के आज हमारा चरण धो रहे हैं, ये क्यों? कृष्ण ने कहा, मैं धर्म का मूल हूं, धर्म से निकला है, तो मैं यदि अपने आचरण से धर्म की शिक्षा न दूं तो लोग नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं धर्म की शिक्षा देने के लिए मैं ब्रह्मण्य देव बनकर और वैष्णवों की, ब्राह्मणों की सेवा करता हूं। यदि मैं न करूं तो फिर दूसरा कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं धर्म का वक्ता हूं, धर्म का रक्षक हूं, मैं सब प्रकार से धर्म की रक्षा करता हूं, तो इसलिए मैं जब वक्ता हूं, अनुमोदन करता हूं और रक्षा करता हूं, तो हमको तो ये खुद अपना करना चाहिए। जो खुद नहीं करता है वो दूसरों की शिक्षा नहीं दे सकता है। आचरण, गुरु की आचरण करेगा, अपने गुरु जी की सेवा करेगा तब वो होगा, वैष्णव की सेवा करेगा। जो सेवा नहीं कर सकता है वो सेवक हो ही नहीं सकता, गुरु हो नहीं सकता, इसलिए कृष्ण ने बताया, इसलिए मैं करता हूं। और नारद जी लोक शिक्षा के लिए, जो भगवान की जैसी इच्छा है उसी में प्रसन्न रहे, उनके लिए तो नर्वत लीला नहीं होगी, उसलिए उसको ग्रहण किया। तत्पश्चात वहां पर देखा जी किस प्रकार से घरानियां सब उनकी सेवा कर रही हैं, वहां पर देखा रुक्मिणी जी से बड़ा प्रेमालाप कर रहे हैं, रसालाप कर रहे हैं, और उसमें भी नारद जी की कैसे सेवा की। नारद जी ने सोचा, यहाँ तो रुक्मिणी के साथ में इतना विलास कर रहे हैं और बड़े प्रेम से उनके पास में हैं, उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो अभी सत्यभामा के घर में जाऊंगा तो वहां पर तो होंगे नहीं, तो उस समय मैं दोनों में झगड़ा लगा दूंगा और लगा करके जरा दूर से देखूंगा प्रेम कला। और सत्यभामा जी क्रोध में दमदमा करके और उल्टा सीधा सुनाएंगी तो मुझको आनंद होगा, इधर में आ जाओ, रोज हमको कहना ना पड़े, जो अधिक सुनने की निष्ठा रखता है वो आ गया है। तो जब वहां गए तो देखा क्या, कृष्णा बड़े सुंदर रूप में पान ग्रहण करते हुए अपने प्रसन्न होकर के सत्यभामा और उद्धव के साथ में पाशा खेल रहे हैं। पाशा समझते हैं क्या? चौपड़ खेल रहे हैं, पाशा खेल रहे हैं, और बड़े प्रेम के साथ देखा जा रही। मैं सोचा जे कृष्णवार नहीं होंगे, उनको झगड़ा लगा दूंगा, यहाँ तो बड़े प्रेम के साथ में चौपड़ कर रहे हैं दोनों के साथ में, और बड़े हंस रहे हैं, बड़े प्रेम में निमग्न हैं, तो ये औसत हमको मिला नहीं, आनंद में भर गए जैसे, जो वहां पर है यहाँ पर अब उनको कौतूहल हुआ। तब फिर जामवंती के यहाँ और जितनी भी रानियां हैं एक साथ 16108 रूप धारण किया नारद जी ने, और धारण करके रूप अब प्रत्येक घर में एक ही साथ में पहुंचे। देखें जी वहां पर क्या कर रहे हैं, एक ही साथ जा करके देखा किसी जगह यज्ञ कर रहे हैं उसी स्त्री के साथ, किसी जगह देखा अपने नाती पोतियों को खिला रहे हैं, गोदी में लेकर के बड़े प्रेम कर रहे हैं। किसी जगह देखा है ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, किसी जगह देखा है और स्त्रियों के साथ में वहां पर शादी रच रही है, किसी जगह में कुछ देखा शादी भी हो रही है। हाँ, एक ही साथ में कहीं दान कर रहे हैं ब्राह्मणों, इस तरह से अलग अलग 16108 रानियों के घरों में अलग अलग रूपों में कृष्ण को वहां पर देखा। कहीं कहीं देखा कृष्ण वहां नहीं है, विरह में वो कातर हो रहे, ऐसा भी देखा। इस तरह से सभी सभी रूपों में देखा। एक ही नारद जी कितने बन गए?
16108।
कहीं देखा है?
उसी समय में
सत्यभामा के घर में तो गए अकेले, किंतु फिर देखा रही यहाँ पर भी है तो 16000 धारण, 16108 एक साथ, और सब जगह उन्होंने अलग अलग रूपों में देखा। अलग अलग उन्होंने देखा कि वसुदेव देवकी को बहुत प्रकोष्ठों में देखा, तो वो अलग देखा, अलग अलग अलग, हाँ उनको अलग 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 रूपों में देखा, उनको भी बना दिया 16108 और अपने भी बन गए, और रानियों को भी बना दिया अलग, और तरह तरह की लीला कर नारद जी मुक्त हो गए, और बिना पंकान करते हुए भगवान का स्तव स्तुति करते हुए जो अद्भुत आज हम आपने हमको दिखाया। नारद जी कम नहीं है, नारद जी भी कम नहीं है जो 16108 रूप धारण कर लिए और धारण करके चारों तरफ देख रहे हैं। ये तो एक जगह की बात हुई, और दूसरी जगह कह रहे हैं क्यों किसी जगह घर में संतान को पालन कर रहे हैं, किसी गृह में यज्ञ कर रहे हैं, किसी गृह में विदेश वास जनित विरह दुख किसी को दे रहे हैं, और सभी कृष्ण को अपने समीप देख रही हैं, किंतु भेद नहीं समझ रही, भेद परस्पर नहीं, वो उसके घर की बात नहीं जान रही, वो उसके घर की बात नहीं जान रही, जो अपने ही अपने में व्यस्त हैं, और सभी कृष्ण को अपने पास रहे। कहते हैं कि ये अवश्य भेद प्रत्यक्ष रूप में सत्य नहीं होने पर भी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये अपना कह रहा है, किंतु है कुछ कि अभिमान के द्वारा ये सब साधित होता है। ये अचिंत शक्ति जोग माया की विभूति का परिचय है। जैसे गोपियों का किसी गोप से विवाह नहीं हुआ, केवल अभिमान है ये हमारा विवाह हुआ, और यह अभिमान कैसे आया, योग माया ने दिखलाया कुछ ऐसा ही, जो उनके साथ में शादी हो रही है, किंतु यह शादी योग माया की केवल एक चाल थी, यथार्थ में नहीं हुआ, अभिमन्यु के साथ में उनकी शादी करा दी योग माया ने, किंतु झूठी शादी, और उनको इसलिए कराया कि अभिमान हो जाए जैसे ये इनकी पत्नी, किंतु वो शादी नहीं थी। इसी प्रकार से कृष्ण कभी मिथिला में गए, वहां पर उनके दो भक्त थे, एक बहुलाश्व नाम का ब्राह्मण, नहीं बहुलाश नाम का राजा जनक के वंश में कोई राजा, और सुतदेव नाम का एक अकिंचन निष्किंचन भक्त ब्राह्मण। वो भक्तों पर दया करने के लिए मिथिला में जब गए दोनों नगर के बाहर में आए। कृष्ण के साथ में बहुत से ऋषि महर्षि ब्राह्मण थे, उसमें परशुराम का नाम दिया, व्यास जी का नाम, नारद जी का नाम और सुखदेव गोस्वामी कहते मैं भी उनमें था, वो भी नहीं। और सब लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, गौतम जी थे, विश्वामित्र थे, बड़े बड़े योगी महर्षि लोग थे। उसमें ये कहते हैं मैं भी था, हमारे सुखदेव गोस्वामी, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके साथ में थे और उसके साथ में वहां पर गए। दोनों भक्त बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, तो उन दोनों ने इनको अलग अलग उसे आकर के प्रणाम किए और दोनों ने निवेदन किया कि हमारे आश्रम में चलिए। उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में चलिए। कृष्ण ने क्या किया, खुद कृष्ण और बलदेव और जितने ऋषि महर्षि थे दो भाग में विभक्त हो गए, दो दो बन गए और एक ही साथ में ये बहुलाश्व और सुतदेव दोनों के घर में एक ही साथ में गए। महाराजा ने राजोचित सम्मान किया और सम्मान करके उनकी आरती उतारी और वैसे ही दिव्य सिंहासन पर बैठाया, ऋषियों को भी सिंहासन पर बैठाया और फिर ऋषियों की पूजा की और फिर कृष्ण की पूजा की बलदेव की और तरह तरह से स्तौ उन्होंने राजकीय भाव से सम्मान और उनका आदर किया, राजासन दिए और वैसे खाने पीने के लिए बहुत उच्च कोटि के स्वादिष्ट अन्न इत्यादि दिए, सोने के थाल में और ग्लास में। और ये ब्राह्मण सुतदेव निष्किंचन अकिंचन, वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, कभी नहीं, अपने आप जो कुछ मिल जाता उसे जीविका का निर्वाह करते हुए पत्नी का भी निर्वाह कराते हुए भगवान के भजन में सेवा अर्चन पूजन में लगा रहता, जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट हो जाता, दुख और कष्ट जो कुछ भी आए उसको बड़े आराम के साथ में सह लेता। जब भगवान आए तो उनको लकड़ी का पीठा, पीठ पीठ माने आसन, उसके आसन चटाई जो उसके पास में था उसी को दिया और आमला हरितकी इत्यादि से भगवान का आतिथ्य ग्रहण किया, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं। ब्राह्मण को जो आमला दे देते हैं या घर में आंवला लगा लिया होगा, आंवला को फलों में सबसे उत्कृष्ट और निर्गुण माना जाता है, बस आंवला दिया। हरितकी हटकी हर्रे मैया कुपित हो जाएगी, हर्रे कुपित नहीं होगी, सब रोगों की एक दवा हर्रे। तो उन्होंने इसी के द्वारा ही भगवान का आतिथ्य, अपने घर में जो कुछ फल मूल जो था उसी से भगवान को संतुष्ट किया, उसी से ये लोग इतने लोग ऋषि लोग और ये सब। अब वहां पर भगवान की उन्होंने भी पूजा की, उन्होंने भी पूजा की, किंतु भगवान ने उनसे कहा देखो इनसे हमारा भेद मत समझना, ऋषियों से ये यदि नहीं होते नहीं नहीं उनके साथ में जो विश्वामित्र और गौतम और बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग थे, सुखदेव गोस्वामी हैं, वादरायणी वेदव्यास हैं, नारद जी हैं और जो हैं, ये लोग नहीं होते तो भगवान को कोई नहीं मान जानता। इसलिए योनि स्वरूप है हमको जनाने के लिए। इसलिए ये हमसे भी हमारे भी ये प्रणम्य है, इसीलिए मैं प्रभण्य देव हूं, इनकी पूजा करता हूं, इनकी पूजा से इनके दर्शन से तुम्हारा घर आज पवित्र हो गया। मैं तो सर्वत्र हूं, कोई देखे और न देखे, मैं तो सर्वत्र हूं, किंतु इन ऋषियों का तुम्हारे यहाँ आना तुम्हारा बहुत बड़ा भारी सौभाग्य है, इसलिए इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी पूजा से मेरी पूजा हो जाती है। ये हमारे हृदय स्वरूप है, इनसे यदि कोई अलग देखता है और इनको छोड़ करके हमारी पूजा करता है तो वो पूजा निष्फल हो जाती है। गुरु के बिना पूजा के भगवान की पूजा निष्फल हो जाती है, इसीलिए गुरु जी की पूजा आगे होती है। गुरु जी नहीं रहते तो भगवान की सेवा के लिए कौन बतलाएगा, इसलिए गुरु की पूजा सबसे पहले। गुरु है कौन, वैष्णव में जो प्रधान है, जो अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं। गुरु अपने आचरण के द्वारा शिक्षा न दे तो भी गुरु गुरु नहीं है ना, आचरण के द्वारा। आचनोत जा शास्त्र, जो आचरण करता है। इस प्रकार से एक ही समय में सुतदेव और बहुलाशो को देखा, उनके घरों में गए। अरे सुखदेव का जो मैं भी था ना, वही तो कारण है, क्योंकि वो तत्व के है। नारद जी जान सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी बादरायणी ये सब ऐसे ही सब उनके साथ में जो जो गए हैं वो सब अनुभव करके हम वो दोनों को कृष्ण ने जोग माया के द्वारा दो भाग कर दिए, दोनों दो भाग में प्रकाशित, दोनों के पास में गए और एक दो दिन नहीं काजे कुछ दिन रहिए, तो कुछ दिन रहे उनके साथ में, उनका पूजा अर्चना सब ग्रहण किया। तो इस तरह से यदि कृष्ण और उनके परिकर दो भागों में विभक्त हो सकते हैं, रास के समय में कृष्ण जितनी गोपी उतने कृष्ण बन सकते हैं, तो क्या वजह है जे कृष्ण दो भागों में। बलदेव जी वो नंद बाबा और दूसरे जितने हैं वो दो, वो एक प्रकोष्ठ में और दूसरे प्रकोष्ठ में अकेले वहां पर आएंगे, इसमें हर्ज क्या है, कोई हर्ज नहीं। उद्धव जी उद्धव भक्त उद्धव जी पहले वृंदावन में गए, उन्होंने क्या देखा, पहले जगह कृष्ण वृंदावन में हैं उस प्रकोष्ठ को देखा, सब गोपियों के साथ में गोपियां दधि मंथन कर रही हैं और कीर्तन कर रही हैं, बछड़े फुदक रहे हैं, सांड लड़ रहे हैं, गायें बड़ी सुंदर रूप से चर रही हैं और चारों तरफ में धूप बत्ती जल रही है और स्त्रियां सुसज्जित होकर के दधि मंथन करते हुए कीर्तन कर रही हैं, उनको कोई शोक नहीं, ऐसा देखा। और फिर थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, और अंत में फिर क्या देखा, जो कृष्ण संपूर्ण रूप से ये ब्रज में ही है और कहीं नहीं, मथुरा में नहीं है, उन्होंने देखा आंशिक रूप में ये देखा। तो उद्धव पहले ब्रज में प्रवेश करके प्रेम लक्षण का दर्शन करके, जब कृष्ण वहीं पर हैं, ब्रजवासियों की बहुत सौभाग्य का वर्णन करने लगे। बलभद्र भी बलराम भी ब्रज में जब पहुंचे तो चमत्कार देखा, अरे वो तो मथुरा में नहीं है, हमने वो कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा, देखते हैं कि वो पहले से ही यहाँ पर हैं, वो तो ब्रज को छोड़ा ही नहीं, ब्रज में ही हैं, उन्होंने देखा चमत्कृत हो गए और गोपियों को प्रबोध देने के छल से कृष्णम कृष्ण सत्यम करो तक, कृष्ण ने कहा था कि हम आएंगे परसों, वो जरूर सत्य कर रहे हैं, करोति है ना, वर्तमान क्रिया करोति कर रहे हैं, क्या ब्रज में तो लौट आए हैं, तो कृष्ण को कंस को मार करके लौट आए हैं। वर्तमान क्रिया का प्रयोग उन्होंने किया है, इसलिए कृष्ण वृंदावन में एक प्रकोष्ठ में है, ऐसा मत समझो। जब वो वृंदावन में नहीं लौटे, जरूर लौटे। आंतरिक दृष्टि से वो वृंदावन में नित्य अवस्थित थे, वस्तुतः इसका बहुत सा लक्षण है। कैन यू स्पीक और ठीक है? नहीं, अभी चल बोल दो, तब फिर इसके बाद हम पीछे और फिर बोलेंगे, तो वो पीछे बोला। तो यू कैन टेल। और नारद जी का काय व्यू, योगियों के काय व्यू के समान नहीं। शौभरी ऋषि इत्यादि का अष्टांग योग इत्यादि के द्वारा जो काय व्यू होता है, वो एक शरीर जैसा करेगा दूसरा शरीर भी वैसा ही करेगा, किंतु नारद व्यास और उनके परिकर और कृष्ण का काय व्यू ऐसा नहीं। किन में देखा ना, जो नारद जी ने हजार रूप शरीर बना दिया और अलग अलग घरों में अलग अलग रूप से गए। भगवान के भक्त भगवान के समान ही होते हैं, ये साधारण है, ये परिकर हैं, ये परिकरों के लिए अलग के। किंतु जो योगी लोग हैं, योग के द्वारा जो काय व्यू बनाते हैं, उसमें वह हाथ उठाएगा तो सभी उठाएंगे, जब खा रहे हैं तो सभी खाएंगे, एक साथ नहीं करेंगे। ये दोनों में अंतर है। योगी लोग भी कर सकते हैं, किंतु उनके में वैशिष्ट, कृष्ण में वैशिष्ट है। सुखदेव गोस्वामी भी सुख पक्षी हैं, राधा जी के सुख हैं, और देखो यहाँ पर मनुष्य हो गए, और चाहे तो और कुछ भी बन, और कृष्ण के साथ में दो सुखदेव गोस्वामी बन गए। तो इसलिए इन लोगों का कृष्ण के समान, और लोग भक्त लोग भगवान के भाव जैसे भगवान जैसे होते हैं, तो भगवान जैसे कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, कुछ हद तक करेंगे। जैसे सनंदन सनत कुमार है, उन्होंने कृष्ण का रूप कोई भी दिखला दिया अपने गोप कुमार को, तो भी भगवान के समान इनका नहीं होगा, तो कुछ जरूर अंतर होगा। जब कृष्ण के और राधा जी में ज्योति वैशिष्ट है, और उनमें भी थोड़ा सा कुछ वैशिष्ट है, तो इनमें तो जरूर होगा। अब कृष्ण बड़े आराम के साथ में प्रकट रूप में बलदेव के साथ मथुरापुरी में आनंद से रहने लगे, और एक प्रकोष्ठ में नंद बाबा के साथ में अप्रकट प्रकाश में वहां पर पहुंच गए, और उनके साथ में अप्रकट प्रकाश में लीला करने लगे, अप्रकट में रहने वाले गोपी गाय इत्यादि के साथ। यहाँ पर अप्रकट की लीला का कभी कभी बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी नंद बाबा से भी मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, किंतु वो लोग समझते हैं कि ये हमारी स्फूर्ति है, या स्वप्न में देख रहा हूँ, या कुछ ऐसे ही स्फूर्ति हो, किंतु मिलते हैं कृष्ण। कृष्ण ने बतलाया, राधिका जी समझती हैं जैसे स्फूर्ति है, ये झूठी बात है, आए ही नहीं, स्वप्न में देखा या स्फूर्ति हुई, किंतु मैं गया वहां, मैं गया। उनसे कह देना, नंद बाबा जी को भी ऐसे संदेश दिए हैं कि मेरी स्फूर्ति नहीं है, जो मैं मथुरा में रह रहा हूँ और स्फूर्ति और स्वप्न दिया, ऐसा नहीं, मैं वहीं पर हूँ। उद्धव जी से कहा है, अपने आप को दूसरे से कहा है, दो दिनों के बाद ही में जदुवंशियों की उग्रसेन के सभापतित्व में सभा बैठी, जिसमें बड़े बड़े जदुगर बुद्धिमान लोग गर्गाचार्य इत्यादि सब एकत्रित हुए, वसुदेव देवकी और सब। उन्होंने विचार किया जे कृष्ण का भाव बदलना है, ये छोड़ नहीं रहा है जे देवकी, जशोदा और नंद बाबा का पुत्र है, और ब्रजवासी है, गोप है, गैया चराना उसका अपना धर्म है, ये सब चीजों को छोड़ नहीं रहा, अभी तक वही समझ रहा है। इसलिए इसका संस्कार बदलना है। कृष्ण इज ऑलवेज थिंकिंग दैट आई एम ब्रजवासी, आई एम द सन ऑफ जसोदा एंड नंद, एंड काउ हर्ड हर्डिंग इज बाय
जॉब
प्रोफेशन। सो विल हैव टू चेंज हिज दिस नेचर एंड दिस अभिमान, अभिमान में
ईगो,
विल हैव टू चेंज। हाउ टू चेंज, कैसे चेंज किया जाए, इस तरह से चेंज किया जाए कि इसको उपवीत दिया जाए, मैया बाप उपवीत दिलवाएं, और हम लोगों का गर्गाचार्य जी हैं ये उपनीत दें, और कुलाचार्य को सब जितने हमारे अंधक अंधक भोज जदु विष्णु ये आठ उसके भाग थे, इन सबको जहां जहां है सबको बुला लो, किंतु नंद जसोदा को मत बुलाना। नहीं तो जिस संस्कार को बदलने के लिए हम करते हैं ये अनुष्ठान, वो तो आएंगे और इसको देख करके उद्दीपना हो गए, उनके साथ ही मेल चला जाएगा ब्रज में, यहाँ पर रहेगा नहीं, इसलिए उनको बतलाना नहीं है और उनको बुलाना भी नहीं है। इसलिए बड़ी दूर दूर देशों में उनका निमंत्रण गया, बहुत दूर दूर से सब लोग आए, अब बहुत बड़ा भारी उत्सव हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में अब भी इस तरफ में, हम लोगों के तरफ में, बिहार में भी, यूपी में भी, विवाह में जितना खर्च होता है उससे अधिक खर्च होता है यज्ञ पवित्र, बहुत खर्च होता है जने, विशेष करके मैथिल ब्राह्मणों में बहुत खर्च होता है, बहुत रुपये काफी, और उसमें दान दहेज सब कुछ दिए जाते हैं यज्ञ पवित्र में, विवाह में इतना खर्च नहीं।
कर्जा लेकर
हमारा कर्जा लेकर के पिताजी ने किया था, इसलिए याद है। इसलिए तो तुमको याद है। ब्राह्मण लोग लेते हैं, वो तो गो जो काट देगा उसका भी ले लेते हैं आज करके, पहले नहीं लेते थे। अभी भी जो सब प्रकार का मृत्यु का दान लेते हैं, मृत्यु के समय का, उनका छुआ हुआ कोई भी समाज में नहीं चलता, यहाँ पर भी ब्राह्मण ऐसे हैं, उनको क्या ब्राह्मण कहते
हैं,
आप बताएं, कट्या कहते हैं, उनका छुआ हुआ समाज में पानी तक नहीं चलता, नहीं छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं। हम लोगों के तरफ में एक गांव था जहाँ पर वो ऐसे ब्राह्मण रहते हैं, उनके गांव से हम लोग स्कूल जाना है तब एक माइल घूम करके जाते थे, कुछ जमीन से ही नहीं जाते थे,
उनकी छाया से भी डरते
हैं। उनके खेत में चने खड़े होते हैं बड़े लुभाव ने, हम लोग खाते नहीं तो बहुत दूर से इसीलिए जाते, कोई भी नहीं, मट्टी भी उसके गांव के पास से नहीं जाते जी हवा ना लग जाए, इसलिए कहा। हाँ, तो उन लोगों ने संस्कार बदलने के लिए कृष्ण का ऐसा किया। दूसरे दिन उनका चारों तरफ में चला गया खबर, और बड़े बड़े जगहों से सब लोग आए, इष्ट मित्र बंधु ज्ञाति परिजन सुहृद सभी लोग आए, किंतु ब्रज का एक चिड़िया भी नहीं आया, एक पक्षी भी, उनको खबर नहीं। ब्रज कितनी दूर, थोड़ी ही दूर, नंदगांव कितना दूर मथुरा से, किंतु वहां पर कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं आया, खबर ही नहीं दी गई। वहां पर कृष्ण का मुंडन हुआ बलदेव जी का, अब बड़े सुंदर लगने लगे और पीले कपड़े पहना दिए, लकड़ी का खड़ाऊ दे दिया गया, ताल पत्र का छत्र दिया गया, और विधिवत मुंज मेखला इत्यादि के द्वारा गर्गाचार से बढ़कर के और कौन होगा जो यज्ञ पवित्र देगा, और वो यज्ञ पवित्र। लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण का ऐसा रूप और बलदेव का रूप ऐसा निखर करके आया, इधर में सब कुछ हो जाने के बाद में यज्ञ पवित्र हो गया तो गुरु जी ने कहा, गर्गाचार्य जी ने, अब तुम अपनी मैया के पास में जाओ और भिक्षा ले आओ। पहले मैया, माता जी, और इसके बाद में पिताजी के पास में जाना, और इसके बाद में पुरुषों के पास में जाना। पहले माताओं के पास में जाना, वो भिक्षा देगी, बड़ी सरल हृदय कोमल हृदय की होगी, उनसे भिक्षा। कम से कम 7 घरों में कि 9 घर कि 12 घर में जाना, और पुरुषों के घर में भी जो पिता स्थानीय है उनके घरों में जाना और उनसे भिक्षा ले आकर के ले आना। पहले अपनी मैया के पास में जाना, किस लिए? मैया संस्कार को कराती है, अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए इसका ऐसा करें जैसे यही इसकी मैया है, इसलिए अपनी मैया के पास, देवकी के पास में जाओ। उनका तो ये तात्पर्य था, किंतु कृष्णा जब उन्होंने कहा जी अपनी मैया के पास में जाओ, तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं? ओहो, हमारी मैया यशोदा जी कहती थी जब तेरा उपनयन कराएंगे तो सोने के चीजों से, अलंकारों से, रुपयों से, मोहरों से मैं भर दूंगी तुम्हारे झोली को। झोली भी दे दिया, और यही दृश्य उनको याद आया। मैया कहने से अभी 2-3 दिन हुआ, किंतु इससे मैया कभी कहा नहीं, कहीं कहने की आदत नहीं है। और रोहिणी जी आ गई थी, उनको मैया, बड़ी मैया कह लेते हैं, बड़ी मैया, इनको नहीं, इनके हाथ से कुछ खाते भी नहीं, वही रोहिणी मैया आकर के कुछ खिलाती हैं, और खिलाने के समय में कृष्ण को याद आती है। आइए, उस कृष्ण का संस्कार बदलना चाहते। तो जब वो झोली दे करके भेजा तो वो कृष्ण सोच रहे जी मैया हमारी ने कहा था तुम्हारे उपनयन के समय में मैं झोली भर करके और भिक्षा मणि मुक्ता से भर दूं और तुम अपने गुरु जी को याद आए। याद आते हैं कृष्ण अब रह न सके। मैया सोच रही है पासी में खड़ी है देवकी, और पासी में वो तो वही तो बैठे हुए संस्कार करा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब ये कृष्ण हमारे पास में आएगा जी मैया भिक्षा दे, और वो जसोदा मैया की याद करते हुए एकदम विरह में तप्त हो गए और संभाल नहीं सके, मैया मैया कह करके पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। देवकी जी देखती रही, दौड़ी, वसुदेव जी दौड़े और गर्गाचार्य दौड़ करके उनको उठाया, पानी छिड़का, उनको मूर्छा से उठाने की चेष्टा की, किंतु रंग भंग हो चुका। कृष्ण बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, मैया मैया, मूर्छित होकर। बलदेव जी की भी ऐसी ही दशा, संस्कार बदला, चेष्टा तो ये कर रहे हैं, फिर किसी प्रकार से अधूरा कार्य हुआ, फिर उसको उठाया और उन्होंने उनकी झोली में कुछ दिए होंगे तो उसे कुछ मतलब नहीं था। फिर तो खाना पूरी हुई, अनुष्ठान की खाना पूरी हुई, और इसके बाद काजी अब तो रखने योग्य नहीं है, ये तो पता लगेगा यशोदा आनंद को, तो वो कल ही आज ही पहुंचेंगे, इसलिए आज ही रात में इनको गुरुकुल में भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए। कम से कम गुरु जी के यहाँ 5-6 महीना 1 वर्ष रहना होता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक उसकी सेवा करना पड़ता है, तो वहां पर भेजना था। भेजने का नियम है, सांदीपनि जी शिव भक्त हैं, समस्त शास्त्रों के आचार्य हैं, यहाँ तक कि धनुर्वेद के भी, 64 कलाओं के वो सबके शिक्षा को जानने वाले हैं, ऐसी कोई विद्या नहीं जानते हैं, किंतु शंकर जी के भक्त। इसलिए कृष्ण ने सोचा जे जोग माया के प्रभाव से ये कहीं हमको वैष्णव भक्त के घर में न भेज दे शिक्षा के लिए, इसलिए शिव के भक्तों को हमको समझने में देर लगेगी, इसलिए उन्हीं के पास में हमको चलना चाहिए। इसलिए जोग माया के प्रभाव से संदीपनी मुनि के यहाँ पर विद्या के लिए उनको भेजा गया। भेजा गया कैसे? संदीपनी मुनि के स्कूल में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए कुछ नियम थे। हमारे यहाँ राजा आएगा, राजकुमार आएगा पढ़ने के लिए, और गरीब दरिद्र आएगा, ब्राह्मण या कोई भी आएगा, एक समान आएंगे। रथ पर हमारे यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और घर से खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। घर वाले कोई भी चीज, एक दाना अन्न या रुपया पैसा कोई भी अपने बेटे के लिए नहीं, और अपने बेटे को रथ पर या घोड़े पर सवारी दे करके कोई भी नहीं भेज सकेगा। पैदल आना पड़ेगा, निष्किंचन होकर के आना पड़ेगा, पैर में जूता नहीं, खाली हाथ आकर के हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे हम, और वो मठ की हमारे घर की सेवा करेगा, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेगा, जो हम आदेश देंगे उसको जरूर पालन करना, चाहे भले ही राजा का लड़का हो चाहे गरीब का, एक समान रहेंगे। जमीन पर सोना पड़ेगा, आकाश के नीचे सोना पड़ेगा, रात दिन में कोई भी आदेश दे सकते। इसलिए कृष्ण यहाँ से पैदल गए, उनके आश्रम में रथ पर नहीं गए, और दीनहीन बन करके गए, अपने घर से कुछ नहीं ले गए, बिछावना इत्यादि। गुरु के यहाँ भी लिखा है समित हाथ में लेकर के जाओ, यदि ज्ञान अर्जन करना है तो समित लेकर के, क्यों? पैसा लेकर के जाएगा, अपना बैंक में जमा रहेगा पैसा, और कुछ रहेगा तो तुमको अभिमान रहेगा, तुम कभी उनकी सेवा नहीं कर सकता, हम देख लेंगे, यदि कुछ हुआ तो हम आपके पास में पैसे छोड़ करके चले आएंगे। तामसिक भाव बना रहेगा, राशिक भाव बना रहेगा। इसलिए हमने देखा है अभी तक जो लोग कुछ नहीं लेकर के आए और संपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया वो बच गए, और जिनका अभिमान है कि मैं गुरु जी को इतना रुपया दे रहा हूं, भक्ति का तो मूल्य समझते नहीं, ये गुरु क्या चीज दे रहा है। कहते हैं कि हमने वर्ष में मैं 4 लाख रुपया गुरु जी को देता हूं, ऐसा कोई नहीं देता। अरे बेटा 4 लाख दिया ठीक है, कहां से दिया, किसके नाम पर, भिक्षा किसके नाम पर किया, अपने नाम पर कि गुरु वैष्णव और भगवान के नाम पर किया। तुमको कोई देता, तुम्हारे जैसे लाखों लोग पड़े हुए दरिद्र पड़े हुए, उनको कोई नहीं पूछता तुमको क्यों दे रहे हैं, जरा बाहर जा करके देखो तो। और दूसरी बात, भक्ति का कितना मूल्य है, श्रद्धा का मूल्य, इन कथाओं का मूल्य कितना है, जो साधन भजन करके लाख जन्मों में एकत्र करके और हमको बतला रहे हैं, इसका मूल्य कभी कोटि कोटि जन्मों में कोई दे सकता है, नहीं दे सकता। किंतु उस मूर्ख के विचार में नहीं आता, वो कहता कि सब जगत वाले मूर्ख हैं। प्रभुपाद के समय में हमारे जो गुरु जी राजकुमार जैसे आए और बड़े बड़े विद्वान राजकुमार जैसे लोग आए, और उनके घर यहाँ पर आश्रम में सभी गरीब जैसे रहते थे, गरीब नहीं निष्किंचन जैसे, कुछ भी पैसा नहीं, कोई भी बैंक बैलेंस लेकर के वहां नहीं आया, नहीं तो वो समझेंगे हम तो दे रहे हैं इनको, सेठ में यहाँ पर हम हैं, घर का किराया देते हैं, खाने के लिए देते हैं, हम पैसा ले आते हैं, पैसा हमारे पास में है, हम ऐसे नहीं हैं, ये अभिमान रहेगा, फिर गुरु में आश्रम में रहने का ये सब चला गया, खत्म हो गया। इसलिए कृष्ण और बलदेव जी को वैसे हो करके जाना पड़ा। गुरु भी बड़े सावधान रहते हैं, कह देते हैं ऐसा मत करो, और जब नहीं मानता है तो किसी प्रकार से, कलयुग है इसमें और भी उदार होना पड़ता है, उनको मान अपमान सहते हैं और सह करके उसको सुजोग देते हैं, उसमें कोई जो सौभाग्यवान होते हैं सुजोग को लेकर के उनकी सेवा करते हैं, और अन्यथा क्या होता है, चौपट को जहन्नम को चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण बलदेव जी सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ अकिंचन हो करके, कोई बैलेंस नहीं, कोई पैसे नहीं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को तो ले लिया, और पीछे से समझने के बाद में लौट आया। और शांतिपुनी मुनि पहले कह दिया जो कोई चीज एक पैसा मत ले, एक धोती पहन करके आना हमारे यहाँ, और हम जो खिलाएंगे खाना, उपवास रखेंगे तो उपवास रहना, इस प्रकार से ऐसे लोग भजन कर सकते। इसलिए वो 64 दिनों में 64 कला उनको सीखा। और कैसे, गुरुवाइन ने कहा जाओ लकड़ी ले आओ, लकड़ी देने के लिए रात में गए, और वर्षा में वहां पर कैसे कष्ट हुआ सुदामा विप्र के साथ में, ये भागवत में वर्णन किया गया। ऐसे गुरु सेवा होती है। इसलिए जो सौभाग्यवान होते हैं कुछ दिनों में पा जाते हैं उस चीज को, और जो दुर्भाग्य होता है अभिमान में मरते हुए अंत में अपराध करके दूसरी जगह उनका नष्ट हो जाता है, कुछ कुछ संभल जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे चले जाते हैं। इसलिए गुरु का कोई भी ऋण, माता पिता का ऋण चुका सकता है, गुरु का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता है, भगवान को देने वाले होते हैं। इस तरह से निष्किंचन हो करके, अकिंचन हो करके, बिना किसी अभिमान का गुरु की सेवा करो तो उनके वचनों को समझ सकोगे, उनके आचरण को समझ सकेंगे, और नहीं तो नहीं सकते। क्या कहेंगे, गुरु दुमुखी है, उसके साथ में ऐसा बात करता है, उसके साथ में ऐसा बात करता है, ये भी कहेंगे। जैसे कृष्ण के लिए दुर्योधन कर्ण दुष्कर्ण कहते थे, ये दो मुख वाला सांप है कृष्ण, वो उसके साथ में, वो उसके साथ में ऐसा बात करता है, उसके साथ में ऐसा, एक साथ व्यवहार नहीं करता। जरासंध कृष्ण को मैं दोष देखता है। इसलिए इस सब से बचने की चेष्टा करो, यदि भजन करना है उनकी आदेश को पालन करने के लिए नरक में जाने के लिए भी प्रस्तुत हम रहेंगे, तब तक गुरु सेवा हो, तब तक समझो। अब अगला चरण कल बदला है, अभी तो आरंभ ही किया था ना, अभी तो पूरा बदला है।
राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माम।